ओम शांति। गीता बहन का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। मैं गीता बहन से अनुरोध करूंगी कि स्व स्थिति पर से परिस्थिति पर विजय कैसे प्राप्त करें वह विधि हमें स्पष्ट करेंगे। आदरणीय गीता बहन।
ओम शांति। संगम युग है ही हम आत्माओं को ऊंची स्थिति बनाने के लिए, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां बाह्य हैं, लेकिन उसका जवाब, उस परिस्थिति को रेस्पोंड हम अपनी आंतरिक आत्मस्थिति से ही देते हैं। परिस्थिति बाह्य है, कोई व्यक्ति के तरफ से आती है, समाज के तरफ से आती है, शरीर के तरफ से आती है, प्रकृति के तरफ से आती है। परिस्थिति दूसरों के तरफ से आती है, लेकिन उसको हम प्रतिभाव, रेस्पोंड अपनी आत्मस्थिति से देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को तो समझाया है कि जो भी परिस्थितियां आती हैं वो बिना कारण नहीं आती है, उसका कारण भी हम खुद ही होते हैं। इस जन्म के, पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट्स से आती हैं, बाबा के बनने के बाद भी कई हिसाब हम बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि बिना कारण तो परिस्थिति आती नहीं है, है ना, हमारे अपने ही कर्मों के हिसाब से आती है। पहले तो परिस्थिति इसलिए भारी लगती थी कि हम दूसरों को उसका कारण समझते, है ना, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये विघ्न डालते हैं। पहले तो हम दूसरों को दूषित करते थे, पर बाबा ने हमारा ज्ञान नेत्र खोला है, वे मेरे साथ ही क्यों कोई ऐसे करते हैं, सबके साथ तो नहीं करते। हम कहते भी है ना कि भाई दूसरे कहते हैं तो उसका काम तुरंत करते हैं, मैं कहती हूँ तो नहीं करते हैं, होता है ना। दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे चलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, तो मेरे साथ ही क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? हिसाब है तब तो करते हैं। इसलिए पहले तो इसलिए भारी लगती थी कि हम दूसरों को दूषित समझते थे। अब हम समझ गए हैं कि आगे पीछे के हमारे अपने ही कोई बचे खुचे रहे सहे हिसाब किताब से ही बातें आती हैं। तो ये सहन करने की बात नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, बाबा मैंने बहुत सहन किया, पर वास्तव में सहन करने की बात नहीं है। एक होती है कर्म की सजा हमारे सामने आती है, तो वो सजा है, हिसाब चुकता हो रहा है, सहन करने की तो बात ही नहीं। मान लो मेरे से कोई भूल हुई और सब मुझे उस नजर से देख रहे हैं, तो वो सहन करना है या वो सजा है? सजा है, क्योंकि भूल की तो देखेंगे, पर अगर मैं परिवर्तन कर लेती हूँ तो धीरे धीरे वो हिसाब चुकता होता है, तो वही लोग फिर हमें एक्सेप्ट भी करने लगते हैं। तो ये जो बाबा नित्य हमें अभ्यास कराते हैं, स्वदर्शन का, स्वचिंतन का, रोज हम स्व में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, तो इस अभ्यास के कारण कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो हम सबसे पहले खुद को चेक कर लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं कि इस परिस्थिति को लाने में मैं खुद तो कोई कारण नहीं, है ना? हमारा अपना, मान लो मैंने किसी को अपमान किया और उसने भी मेरे साथ रिएक्ट किया, और मैं कहूं देखा देखा मेरे साथ कैसा उसने व्यवहार किया, पर कारण कौन है? हम खुद हैं, हमने बीज बोया ना, हमने ऐसे शब्द बोले तो वो रिएक्ट किया ना उससे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बात आए पहले खुद को चेक करें, 5% 10% भी अगर हमारी भूल है तो हम उसको करेक्ट कर लें, है ना? कारण तो दिया ना हमने, हमने कारण दिया ना उसको ऐसा व्यवहार करने, तो अपने आप को ठीक कर लेना है। और अभी का कोई कारण नहीं है मान लो, तो मुझे इतना भारी होने की जरूरत नहीं है, पूर्व के कोई हिसाब से हुआ है तो मुझे शांति से, धीरज से, हिम्मत से हिसाब चुकाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि भाई शरीर की बीमारियां, कर्म भोग, ये भी तो एक अकाउंट है ना, तो बाबा ने क्या कहा है कि दवा दुआ और योग से कर्म भोग को चुकाओ, जो दवाई कर सकते हैं वो हम करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा मनसा न चलाएं। जो हम कर सकते हैं वो करें, कई बार हम दवाई खाते हैं तो भी भारी होते हैं कि मैं तो इतनी गोलियां खा रही, तो बाबा कहता है इट इज कॉमन, कलयुग में तो सामान्य, हर कोई दवाई खाता है, कहीं इसी बात से भारी हो जाते हैं ना कि रोज दस दस गोली में लेते, तो क्या है, जरूरी है तो लेनी है। माना खुद से भी हम डिटैच रहते हैं तो भारी नहीं हो। बाबा तो कहता है ना ये तो कलयुगी ड्राई फ्रूट है, खुशी से खाओ भारी हो के नहीं खाओ। बाबा की याद में खुशी से खाओ, दुआएं वो मदद करती हैं। हमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की, सहयोग दिया, समय पर साथ दिया, दुआएं तो इससे मिलती है ना, मांगने से तो नहीं मिलती है। दिल से कार्य करो, सेवा करो, साथ दो, सहयोग दो, मददगार बनते हैं तो जो वो दुआएं कमाई है वो मदद करती है। कहते हैं ना भाई बच सके ऐसा नहीं था पर किए हुए पुण्य काम में आए, ऐसे कहते हैं। और योग बाबा की याद, हमारा सबसे अमोघ शस्त्र कौन सा है? बाबा की याद। बाबा तो कहता है तुम्हारा रामबाण इलाज कौन सा है? बाबा की याद। अल्टीमेट तो लोग उसको ही याद करते हैं, हमें तो पहले से वो सहारा मिला हुआ है। और बाबा कहते हैं कि वही सही बीमारियां भी बाहर निकलेगी, पहले तो मुझे कभी बुखार नहीं आता था, अब तो बहुत आता है। तो भाई हम कोई स्पेशल तो नहीं है, इस कलयुग के बीच में है, पूरे कल्प में हिसाब तो हमने भी बनाए हैं, तो वो तो आएंगे ना। बाबा के बने बाबा को पहचाना तो हम ठीक हो गए क्या? हिसाब तो है ना, तो ये भी हम क्यों सोचिए कि बाबा के बनने के बाद ही ये सब हो रहा है। बाबा नहीं कहते हैं कि दुनिया में भी सबको बीमारियां होती हैं, हम आपस में एक दो को जानते हैं इसलिए हमें आपस के भाई बहनों की बीमारियों का पता चलता है, तो हम सोचते हैं कि ब्राह्मणों को ही ज्यादा होता है ऐसा नहीं है। बाबा के बने तो कोई हमने बाबा पर उपकार कर दिया क्या? हमारे हिसाब हम चुकाएंगे कि बाबा चुकाएगा? और फिर भी सच्चाई से हक रखते हैं तो मदद तो मिलती ही है ना। कहने का भावार्थ ये है कि हम जानते हैं कि हमारे हिसाब किताब से ही बातें आ रही हैं, तो चुपचाप पार करनी है। अरे इसमें ज्यादा वर्णन क्यों करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि ये अंत का समय है, परिवर्तन का समय है, महापरिवर्तन का समय है, आमूल परिवर्तन का समय है, रूट से चेंज का पीरियड है ना। ये टेम्पररी ऊपरी ऊपरी परिवर्तन का ये समय नहीं है, ये तो टोटल चेंज का पीरियड है। तो परिवर्तन के समय में तो हलचल आती है ना। एक वातावरण भी चेंज होता है तो आता है ना बीमारी, तकलीफ होती है ना। सिंपल एक वातावरण चेंज हुआ, उसमें तकलीफ होती है, तो ये तो टोटल चेंज का पीरियड है ना। और इस हलचल के बीच जो अचल रहते हैं वही तो सत्य सिद्ध होंगे। इसलिए बाबा जो कहते हैं कि अंत का समय है, परिवर्तन का समय है, तो वो भी बुद्धि में याद रखते हैं तो हम ज्यादा हिलेंगे नहीं, अपने आप को अच्छा लड़ोल रखेंगे। लौकिक परिवार के तरफ से बातें हैं, शरीर के तरफ से बातें हैं, प्रकृति के तरफ से बातें हैं, पर अगर बाबा याद है, साथ है। देखो याद सिर्फ नहीं, याद तो भक्त भी करते हैं, बल यथार्थ रूप से जानते नहीं है पर याद तो करते हैं ना भगवान। पर बाबा तो हमारे साथ है क्योंकि हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, हम उनकी आज्ञा पर चलते हैं, तो बाबा साथ है, तो बाबा की शक्ति, बाबा का ज्ञान वो भी तो हमें मदद करता है। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको पता नहीं है कि ये अंत का समय है, उनको तो बहुत भारी लगता है ना कि ये क्या हो रहा है सब। हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों है, ये क्या दुनिया में हो रहा है ना। क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये तो अति के अंत का समय, तो उनको बहुत शॉक लगता है कि ऐसा कैसा हमारे साथ हुआ है ना। कोई अचानक शरीर छोड़ दे, एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उनको बहुत शॉक लगता है, आघात लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये अति के अंत का समय है और ये महापरिवर्तन का समय है। हर चीज अति पर जाकर अंत होनी है, बाबा ने कहा है ना कि पांचों तत्व और पांचों विकार अंत तक अप दांव लगाएंगे हिलाने के लिए, है ना। पूरी जैसे वो कहते हैं ना कि युद्ध में राजपूत लोग है ना मरने के संकल्प के साथ मतलब लड़ते थे, तो ये भी अपना अंतिम प्रयास करेंगे ना कि अभी भी ये हिलते हैं, है ना। अपना अति जो रूप वो दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे ना, पर हमें बाबा ने पहले से बताया है, तो जब भी कोई बात आती है तो बाबा के बच्चों के मुख से क्या निकलता है, ड्रामा बाबा ने कहा ही है, ये निकलता है ना कि हमें तो बाबा ने पहले से बताया कि ऐसा ऐसा होना है। तो वो जो ज्ञान है वो उसका आधा शौक तो खत्म कर देता है कि भाई पता है बाबा ने बताया ही है, और बाबा ने लंबा पीरियड हम सबके पीछे जो मेहनत की है, बाबा को मेहनत नहीं लगती है, पर बाबा ने जो हमें पढ़ाया सिखाया इतना मार्जिन हमें दी, उसका कारण ही ये है कि बाबा ने हमें मेंटली प्रिपेयर किया, बाबा ने हमें तैयार किया। अंदर अंदर वो स्थिति हमारी बनती जाती, क्योंकि रोज जब आप देखो दिनचर्या में रोज हम बाबा की याद में बैठते हैं, रोज बाबा के सतवचन सुनते हैं, तो एक अवेयरनेस तो पक्की होती जाती है। अच्छा, याद में बैठते हैं माना उतनी क्षण हम हर प्रवृत्ति से डिटैच होते हैं। दुनिया में तो सारा दिन वही बातें वो सोचते रहते, हम बाबा की याद में बैठते हैं चलो एक घंटा दो घंटा आधा घंटा, उतने क्षण हमें डिटैच सभी बातों से न्यारा होने की प्रैक्टिस होती कि भई ये बातें हैं मुझे ही पार करनी है, पर अभी एक तरफ रखो अभी बाबा की याद में बैठ। तो आधा घंटा घंटा दो घंटा हम अपने आप को वहां से विड्रॉ करते हैं ना, न्यारे होते। वास्तव में अपने आप को वहां से विड्रॉ करना भी पावर देता है। कोई चीज पकड़ के उसी पर हम सोचते रहे तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है, पर थोड़ा डिटैच होके फिर वो चीजें वापस आके देखते हैं तो रूट कॉज कारण समझ में आता है। अच्छा, फिर जब बाबा की याद में बैठते हैं तो हम डिटैच होते हैं, देह भान से अलग होते हैं। ये देह भान से न्यारा होने की प्रैक्टिस हमें हर परिस्थिति में साक्षी बनने का अभ्यास कराती, इससे हम सहज साक्षी बन सकते हैं। अगर ये अभ्यास ना हो, लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो गृहस्थी, वो संबंध, वो बातें बहुत असर करती। हम देह में रहते देह भान से अलग होते हैं तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो एक ट्रेन में आप बैठे हैं और वो ट्रेन स्पीड से जा रही है, दूर से नदी दिख रही है, उसी दिशा में वो स्पीड से ट्रेन लेके जा रहा है। दूर से तो लगेगा कि अरे भाई ये तो जाके नदी में ही गिरेगी ट्रेन, पर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पार होने का सुंदर ब्रिज दिखाई देता है। ऐसे ही कई बार हमें लगेगा कि भाई ये तो मेरे सहने से बाहर की चीज है, बहुत हो गया। पर अगर हम अंदर थोड़ा सा भी धीरज और शांति रखते हैं तो वो बात को पार करने की सहज युक्ति हमें टच होती है, दिखाई देती है। और उसमें ये रोज का किया हुआ अभ्यास काम में आता है कि बार बार हम, ऐसा भी नहीं है सिर्फ योग में बैठते हैं सब, जो बाबा के बच्चे अभ्यासी हैं, पुरुषार्थी हैं, वो तो अंदर अंदर ये प्रैक्टिस करते ही हैं कि मैं इनसे अलग हूँ। शरीर सहित सारा संसार तो तत्व है, मैं उनसे अलग एक शक्ति हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, चैतन्य हूँ। ये डिटैच होने का अभ्यास हम, जिससे हम हर दृश्य को, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होके देख सकते। जो साक्षी नहीं हो पाते ना, वो प्रभावित बहुत हो जाएंगे। हैं ये क्या हो गया, वैसे हमारे घर में ये क्या हो गया, तो बस फिर विवेक काम नहीं करता। पर डिटैच होके देखेंगे तो पार होने की युक्ति बुद्धि में आएगी। बाबा परिस्थितियों को नहीं मिटाता है, क्योंकि वो तो कर्मिक लॉस से आएंगे। बाबा हमें ऊंचा और शक्तिशाली बनाता है, वो ज्ञान सिखाता है, वो योग सिखाता है, जिससे हमारी स्थिति ऊंची बन जाती। एक कॉमन लेवल पर खड़े होके तो हर चीज बड़ी बड़ी स्पष्ट दिखेंगी, पर आप उस लेवल से ऊंचे पहाड़ी पर खड़े होके देखेंगे तो वही चीजें छोटी नजर आती है। अगर एक कॉमन स्टेज से मैं देखूंगी तो मुझे बातें भारी लगेगी, पर अगर मैं थोड़ा और रूहानी बन जाऊं और ज्ञानी बन जाऊं और योगी बन जाऊं तो यही चीज से मुझे छोटी लगेगी, सामान्य लगेगी, क्योंकि हमने अपने आप को ऊंचा बना दिया। कथा में बताते हैं ना कि भाई रावण ने मान नहीं दिया तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना आसन ऊंचा बना दिया। तो वो कौन सा आसन? अपने स्वस्थिति का आसन है, स्वमान का आसन है कि अपने आप को ऊंचा उठा लो। तो कॉमन लेवल पर आई हुई बातें हमें भारी नहीं लगी। साक्षी होके देखना बहुत जरूरी। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी पालना दी, पर इतना उनके तरफ से रिजल्ट नहीं मिला। गलत संग में, गलत बातों में उनके, अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, अटैच होंगे, तो वो चीज हमें दुखी कर देगी। पर अगर डिटैच होकर करते हैं कि भाई हमने अपने तरफ से तो अच्छा कार्य किया, पर उस आत्मा के अपने भी तो संस्कार है ना, उनका अपना भी रोल है। ये तो इस जन्म में हमसे जुड़े हैं, बाकी तो कितने रोल प्ले करके वो आत्मा आई है, क्या क्या संस्कार लेके आई है। तो अटैचमेंट से देखते हैं तो दुखी हो जाते। बच्चा बीमार हुआ तो अटैचमेंट के कारण माँ अंधी हो जाती है, वहां सामने दवाई होगी तो भी नहीं दिखे। पर एक नर्स, वो भी प्यार से ट्रीट करती है पेशेंट को, पर डिटैच है ना, अपनापन नहीं है, तो वो चीज भारी नहीं लगी। ये रोज का अभ्यास देहभान से न्यारा होने, हम मिलते हुए भी अंदर से डिटैच, न्यारेपन से मिल रहे। कल भी शायद बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा ना, उड़न आसन कौन सा है? न्यारा बनना। अच्छा, रोज हम बुद्धि से ऊपर जाते हैं वतन में, वरना तो हम इस दुनिया में ही घूमते रहते थे ना बुद्धि से भी, क्योंकि हमें उस वतन का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। अब रोज हम अपने असली घर में जाते हैं, इस दुनिया से ऊपर उठते हैं ना, तो एक ऊंची स्थिति में स्थित होने का इससे अभ्यास हो जाता कि मुझे इसमें ही लगे नहीं रहना है। चौबीस घंटे बच्चों के आगे रहने से बच्चे अच्छे नहीं बनते, हम खुद अच्छे हैं तो अपने आप वो बनने की प्रेरणा मिलती है। माना उसी में लगे रहने से हम सॉल्यूशन नहीं ला सकते, हमें अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना। रोज बाबा से वतन में जाकर, परमधाम में जाकर हम बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा से मिलते हैं। तो ये सारे अभ्यास बहुत यूजफुल है, देखने में कितना सहज योग है, पर ये सारे अभ्यास हमें काम के। और हम सबका अनुभव है कि ज्ञान में आते ही बुद्धि दिव्य बनी, दृष्टिकोण सही हुआ, बाबा के बनते ही आधी समस्या तो अपने आप खत्म हो गई। आधी परिस्थितियां, मुसीबतें, समस्याएं तो सही ज्ञान ना होने के कारण। अज्ञानता, अंधश्रद्धा, लौकिकता, ये क्यों था इतना? क्योंकि हम अपने आप को ही लौकिक समझ रहे थे ना। लौकिक शरीर लौकिक है ना, आत्मा अलौकिक है। तो ज्ञानी तो आत्मा बनने से, और बाबा जो समझ देते हैं वो स्वीकार करने से आधी समस्याएं तो हमारी वहीं खत्म हो गई। जो समझ बाबा देता है वो प्रैक्टिकल में भी अप्लाई करना है ना, लाइफ में। सिर्फ योग के समय नहीं, प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में भी अप्लाई करते। आज ज्ञान नहीं होता तो जीवन क्या होता है? सोचो कभी। अगर जीवन से हम ज्ञान माइनस कर दें तो लाइफ क्या रहती? तो बाबा का ज्ञान इतना ऊंचा, सत्य शक्तिशाली है कि वो तो बाबा के बनते ही आधी बातें तो खत्म हो गई। क्योंकि बाबा ने हमें ठीक किया ना, हमारा फोकस से ही खुद के तरफ आ गए। हम पहले कारणों का चिंतन करते थे, क्यों आया, क्यों आया, किसके कारण आया, इसने किया होगा, यही होगा, क्या क्या सोचते रहते थे। तो वो फोकस से ही शिफ्ट हो गया ना, हमारे तरफ हो गया। है अनुभव, क्या लगता है? बाबा के बनने से आधी बातें खत्म हो गई? वो तो आते ही बाबा ने कितनी चिंताओं फिक्रों से फारीग बना दी। बाकी जो बातें आती हैं, तो जितनी हम अपनी आत्मस्थिति ऊंची बनाते हैं तो वो फिर हमें भारी नहीं लगती। कहते हैं ना कि लक्ष्य इतना ऊंचा बना लो कि बंधन, रुकावटें, समस्याएं उसके आगे छोटी हो जाए। अच्छा, दुनिया में आज कोई व्यक्ति कुछ भी अचीव करता है, सक्सेसफुल होता है, सेलिब्रिटी बनता है, वो ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बन जाता है? हर कोई मेहनत करता है, अपने क्षेत्र में मेहनत करता है। और उस क्षेत्र के अपने भी तो कुछ नियम है। आज समझो एक एक्टर या एक्ट्रेस बनते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अच्छा अच्छा मेकअप करने का, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने का, बस वही करना है ना। पर वही होता है क्या? कितना वो एक्सरसाइज डाइट के कितने नियम पालन करते हैं, कितनी बार अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बिना मेहनत कोई भी अपने क्षेत्र में सफल या शिखर पर थोड़ी पहुंचता है। अगर हमें भी, हमने आध्यात्मिक क्षेत्र चुना है क्योंकि हमने समय को, बाबा को, स्वयं को पहचान लिया है। दुनिया तो नहीं जानती है ना, इसलिए वो दूसरे दूसरे क्षेत्र चुनते हैं। पर हमने जान लिया है ना, तो हमने ये चुना है। तो पुरुषार्थ तो लगेगा ना, इसलिए लक्ष्य इतना ऊंचा और मजबूत हो। बाबा कहते ना, लगन इतनी हो कि विघ्न भस्म हो जाए। नशा इतना हो कि विघ्न की महसूसता ना। कहते ना, निंद्रा की परसेंटेज ज्यादा होती है, माना डीप स्लीप क्वालिटी स्लीप है, तो स्वप्न याद नहीं रहेंगे। गहरी निंद्रा नहीं होगी तो स्वप्न 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 जैसे मन चलता ही रहा, ये ऐसा अनुभव होता है। नशे की परसेंटेज ज्यादा होगी, जितना नशा होगा। एक है समझ कि बाबा मिला है, ठीक है, एक है खुशी हमें भगवान मिला है, और एक है नशा कौन मिला है, कौन हमारा साथ। तो नशे की परसेंटेज जितनी ज्यादा होंगी, विघ्न की महसूसता नहीं। और नशा बना रहे, नशा चढ़े, उसके लिए रियलाइजेशन चाहिए। और वो रियलाइजेशन रिवाइज करते रहना है। आज गुलाब जामुन खाया, और जितनी बार याद करेंगे अरे आज गुलाब जामुन खाया, आज गुलाब जामुन खाया, तो एक ही बार, पर 10 बार याद करेंगे तो स्वाद आ जाएगा, खुशी होगी। हाँ भाई मजा आ गया आज तो, ये खाया। तो कौन मिला है महसूस करे बार बार। भगवान मिला है, भगवान भाई नहीं मिला है। भाई ढीला ढीला कहेंगे, मैसेज देते हैं कि भगवान आया है, तो लोग सोचेंगे आया होगा कोई भगवान भाई। पर नशे से कहेंगे, उस अथॉरिटी से महसूस ता निश्चय के साथ, तो खुद को भी खुशी और उस आत्मा को भी प्राप्ति। बच में कौन मिला है, ये बातें नहीं है, ये सत्य है कि हमें भगवान मिला है, तो ये कितनी बड़ी चीज है। तो उसको महसूस करो बैठ कि सचमुच कौन मिला है। क्या क्या मिला है, तो बाबा कहते हैं ना कि याद में भी चेहरा खिल जाएगा, चमक उठेगा। वो एक कहानी में बताते हैं ना कि एक बंदा रास्ते के किनारे पर बैठ के बंती कर रहा था। लैला मजनू का नाम तो सुना है ना, उसकी संबंध में ये कहानी बताते हैं कि वो मजनू के प्यार में, मिलन के आकर्षण में, खुशी में, नशे में ऐसे जा रही थी, तो उसको तो ध्यान नहीं रहा कि भाई ये यहाँ बीच में कोई बैठ के बंदगी कर रहा है, तो उसको ठोकर मार के मैंने टकराई उनसे, और वो तो आगे चलती रही। तो वो बंदगी करने वाले ने कहा कि दिखता नहीं है, ठोकर लगा के जा रही है। उसने कहा कि मुझे तो मजनू के प्यार में ठोकर का भी अनुभव नहीं हुआ, तुम शायद प्रभु के प्यार में इतना खोया हुआ नहीं है, तुमको ठोकर का अनुभव हुआ। अरे एक बॉडी कॉन्शियस लेवल पर चलो, बाबा तो बताते हैं ना कि एक देहधारी का देहधारी के प्यार में वो चीज। हम तो किससे प्यार कर रहे हैं, बाबा से प्यार कर रहे हैं। तो फिर वो बातें हमें बड़ी महसूस नहीं हुई, फिर वो सामान्य लग। साढ़े 700 करोड़ आत्माओं में से सतयुगी देवताओं को फाइनल विश्व के आगे आना है, प्रत्यक्ष होना है, तो प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि परिस्थितियों में भी हम हिलते नहीं हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि अगर समझ में नहीं आता है, संशय आता है, तो भाग जाओ। हाँ, बाबा कहता है आज था या पता नहीं कब था। हाँ हाँ, परखना किस हद तक है बाबा को, सत्य को कितना गहराई से हमें समझ। और दो चीज हम जानते हैं कि अवस्था आत्मस्थिति, वास्तव में वो ही हमारी रियल अचीवमेंट। कि बाबा ने दिया, दे रहा है, पर मैंने अपना कहां तक बनाया। मैंने अपना कहां तक बनाया, अवस्था तो तब बनती है कि बाबा ने दिया पर वो समझ मैंने अपने जीवन में धारण कर ली वो मेरी हो गई। आज एक स्लैब भरते हैं मकान का तो कितना स्ट्रक्चर लगाते हैं, कितने खंभे प्लेट्स लगाते हैं। जब स्लेब फिक्स हो जाता है फिर क्या करते, स्ट्रक्चर निकाल देते ना सारा, क्योंकि वो फिक्स हो गए। हमने अपने आप में कौन सी चीजें फिक्स की, बाबा ने दी अवस्था तो इससे बनती है। स्लैब फिक्स हो गया माना शक्तिशाली हो गया, बिना स्ट्रक्चर अब वो वेट सहन कर सकता है, उठा सकता है। बाबा ज्ञान दे रहा है, हमने अपने आप में फिक्स क्या किया, स्थाई रूप से धारण जितना कर लेते हैं उतनी शक्तिशाली स्थिति बन। ये पढ़ाई, ये अभ्यास योग का, ये नियम संयम, ये सेवा, जो हमारे चार सब्जेक्ट है, इनके द्वारा हम एक आत्म स्थिति बनाना चाहते कि मुझे अपने आप को शुद्ध सत्य दिव्य बनाना है। बाबा जिसको कहते हैं ना कि तुमको दिन रात ये फुरना रहे कि सतो प्रधान कैसे बने, अपने आप को सतो प्रधान कैसे मुझे बनाना, उसी के लिए ये सारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ना। तो हमें तो रिजल्ट ये लाना है ना कि हमारी ऐसी स्थिति हमें दिव्य बनाए। तो एक तो अभ्यास से बनेगी, दूसरा वैराग्य की तरह। सच में जो चीजें असार है, असत्य है, अपवित्र है, अयथार्थ है, अनावश्यक है, वहां से मुझे अपने आप को हटाना है, राग मिटाना है, वो वैराग्य। वैराग्य माना इन सब बातों से राग मिटाना है, आसक्ति मिटानी। तो बाबा में मगन हो सके। बाबा ने कहा है बेहद के वैरागी माना लवलीन अवस्था, एक तो ये अवस्था हम संगम युग में ही बना सकते। बाबा के सत्य ज्ञान योग की मदद से बना सकते, बाकी तो सारा कल्प में क्या करते उतरती कला में ही जाते। परम धाम से जिस क्षण हम उतरे सतयुग में उसी क्षण से उतरती कला शुरू है ना, खर्च शुरू है, जमा करने का खाता बाबा कहते हैं ना संगम युग में खुलता है। हर चीज की सीजन होती है ना कि भाई सीजन में ही अच्छा मिलेगा। तो अवस्था बनाने की, स्वस्थिति बनाने की सीजन अभी है ना संगम युग। तो अभी ही बना सकते हैं, बाबा के साथ से बना सकते हैं। तो मुझे उसमें अलबेला नहीं रहना। और कोई लीकेज नहीं रखना है, जहां से किए करे ज्ञान युग की शक्ति बह जाए। भाई आप स्टोव में हवा भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, पर लीकेज है तो भी टायर में हवा भर रहे हैं पर लीकेज है तो नहीं रहती है, बह जाती है। स्थिति शक्ति तो तब भरेगी ना कि लीकेज हम ना रखें। कहां से मेरी रूहानी शक्ति खत्म होती है, कहां मेरी अवस्था नीचे आ जाती है। किस बात से नशा उतर जाता, वो हरेक का अपना कारण है ना? तो वो मुझे चेक करके कि कौन सी बात व्यक्ति जहां मैं कमजोर हो जाती, वो लीकेजेस बंद करेंगे तो अवस्था पावर भरे। फिर उसके आगे परिस्थिति कुछ भी महसूस नहीं। और बुद्धि में इस जीवन का कोई अल्टरनेट नहीं रखना है, विकल्प नहीं रखना। थोड़ा भी विकल्प रखा ना कि भी चल सकेंगे तो चलेंगे, पर तो जब तक हमने ये विकल्प रखा ना तो ताकत नहीं भरेगी अवस्था। कि कुछ ऐसा हुआ तो कदम पीछे कर लेंगे तो कभी पावर नहीं भरेगी। करेंगे या मरेंगे का ही पुरुषार्थ है। इसलिए कहते हैं हरि का मार्ग है शूरवीरों का मार्ग। पहले मस्तक रखो फिर बात करो। बनके ही रहना है। क्यों बाबा कहता है कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएंगे, वो बातें नहीं चाहिए, बनना ही है। तो बाबा कहते न प्रकृति न माया न व्यक्ति है ना कुछ भी वार नहीं कर। तो हम सब मिलकर कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ संकल्प अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला दृढ़ संकल्प, मैं सुखता, मैं स्वयं अचल आत्मा। शरीर हलचल, आसपास का संसार हलचल, परिवर्तनशील, उसके बीच मैं आत्मा अचल। अजर अमर अविनाश, मैं हूं तो जीवन है, मैं आत्मा निकल जाऊं तो जीवन समाप्त है। जीवन का केंद्र बिंदु मैं स्वयं आत्मा, जब मैं स्वामी स्थित हो जाती हूँ तो शांत स्थिर एक रस बनती जाती, राइट साइड घूमे, स्वयं भगवान मेरा साथी, अब मैं बाबा के साथ डबल, बाबा साथ है, तो मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन जाती हूँ। मैं बाबा से कंबाइंड सर्वशक्तिमान मेरा बैकबोन है, मैं आत्मा से जुड़ी शिव शक्ति, कल्याणमय शक्ति, बाबा के सामने सिर हो जाए, हम स्वयं विशेष आत्मा है। ड्रामा की हीरो एक्टर कल्प पहले वाली विजयी आत्मा होवनहार देवता बनने वाली आत्मा हम इस संसार की धुरा के समान हैं। हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थिर रहेंगे तो संसार की गति भी स्मूथ रहेगी, सहज। हम निमित्त हैं, सदा सुखमयी संसार बनाने के लिए। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में परेशान नहीं होते हैं, वे ही अनुकूल वातावरण में अनासक्त रहते हैं। कमल बन के रहते हैं, लेफ्ट साइड घूम जाए। अब वापस घर चल, वहां चलना है जहां सदा शांति पवित्रता निसंकल्पता एक रस वतन है। मुझे अपनी शुद्ध सत्य अनादि स्थिति में चैतन्य बीज रूप भरपूर संपन्न अवस्था में मर्ज रहना, मग्न समाये हुए रहे। अब जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, उनके जैसा बन फिर से बाबा के सामने खुश हूं। अब संगम के अंत का रोल बहुत शक्तिशाली लेकर विश्व की आत्माओं को स्वस्थिति के इशारे से बल भरना है। प्रकाश देने है। साथ स्नेह शक्ति की मदद करना। मुझे हलचल से परे स्वयं अचल अडोल एक रस स्थिरियम बनना। अब मन ही मन पांचों ही संकल्प रिवाइज करते